वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बड़े भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार करने बैठे हैं। जीवन अच्छा बनता है दृष्टि की निर्मलता से। जिसके पास दृष्टि की निर्मलता होती है वो अपने आप ही कुछ बातें, कुछ गुण अपने भीतर प्रकट होते देखता है। वो गुण आपोआप उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं दृष्टि की निर्मलता के कारण। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास कर ले तो अकेले उसके विश्वास करने मात्र से उस व्यक्ति जिस पर विश्वास किया है उसके द्वारा कही गई सब बातों पर विश्वास हो जाता है। बड़े निश्चिंत हो जाते हैं उसके सानिध्य में, उसकी उपस्थिति से। तो क्या उसकी उपस्थिति ने हमें निश्चिंतता दी? नहीं, उसके प्रति हमारी जो श्रद्धा थी, हमारा जो विश्वास था, उसने निश्चिंतता दी। ऐसे ही सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने मन में अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो अपने कल्याण के प्रति हम निश्चिंत हो जाते हैं। हमारे भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हम अपना कल्याण कर पाएंगे, वरना हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि ऐसी स्थिति में जबकि हम संसार में पतित हैं क्या हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं। हमें अपने भीतर आत्मविश्वास जागृत करने के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति विश्वास या श्रद्धा कारण सहयोगी बनता है। बहुत पहले जब जॉर्ज बर्नार्ड हुए तो एक दिन वो बहुत चिंतित घबराए हुए से थे, तो उनके मित्रों ने उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित और घबराए हुए से क्यों हैं और उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि आज समाचार मिला है कि गांव में मेरे पिताजी थे वो नहीं रहे। मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे आप तो पहले बता रहे थे कि जब 13 वर्ष की उम्र आपकी थी तब आप अपने पिता को छोड़ करके और शहर में रहने आ गए थे, और अब जब पिता 72 और 82 साल के होकर के एक्सपायर हुए हैं, इतने सारे दिनों के बाद भी, इतने दिनों से आपने छोड़ दिया था उनको, आप उनसे दूर ही रहते थे, फिर उनके नहीं होने पर आज आप इतने उदास, इतने चिंतित और इतने घबराए हुए से हैं, जबकि आप वर्षों उनके बिना ही रहना सीखे हैं। तो वर्णाश्रम ने क्या कहा, भले ही 13 वर्ष की उम्र से मैंने पिताजी को नहीं देखा, 50-60 बरस हो गए मुझे अकेले रहते हुए, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक एहसास था कि कोई है जो मुझे संभाल लेगा अगर मैं गलत हो जाऊंगा। पिता की उपस्थिति महसूस होती थी, लेकिन अब जब उनके मरण का देहावसान का समाचार मिला तो मन में चिंता और घबराहट सिर्फ इतनी है कि अब कौन है जो कि मैं कहीं गलत हो जाऊंगा तो मुझे डांट देगा, संभाल लेगा। विश्वास और श्रद्धा हमारे जीवन में, भगवान बहुत दूर है फिर भी भगवान की उपस्थिति का एहसास कराने में कारण बनता है। गुरुपास्ति का अर्थ जैसे अपन लोग सामान्य रूप से लेते हैं कि गुरुओं के निकट रहना, तो अगर गुरुओं के 24 घंटे निकट कर रहे तो उनको ही डिस्टर्ब होगा, पर लिखा तो है कि गुरुपास्ति गुरु के निकट रहना। उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं लेते अपन, स्थूल अर्थ ले लेते हैं। सूक्ष्म अर्थों में सीधा सीधा सा आशय उसका यही है कि गुरु के को अपने निकट रखना। जब भी कोई गलत काम करने का मन हो तो जैसे आकर के गुरु स्मरण में और हमारा हाथ पकड़ लें कि क्या कर रहे हो, यह कार्य तो तुम्हारे योग्य नहीं है। ऐसी उपस्थिति की फीलिंग, उपस्थिति का एहसास हमें श्रद्धान कराता है। यह गुणवत्ता हमारे श्रद्धान से हमारे भीतर स्वयं प्रकट हो जाती है। हम बहुत निश्चिंत और निर्भय होकर के अपना जीवन जीते हैं। 8 बातें जिनमें से अपन 7 बातों पर विचार कर चुके हैं कि जिसकी दृष्टि निर्मल है वो निशंक और निर्भय होकर के सच्चाई के रास्ते पर चलता है। वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए कभी भी संसार की भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं करता। वो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले अन्य लोगों के प्रति उनके शरीर को देख करके घृणा नहीं करता। वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बुराई के रास्ते पर बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी ऐसा कोई अगर लालच भी दे तब भी अपने विवेक को जागृत करके और अपने सच्चाई के मार्ग पर ही चलता है। और इतना ही नहीं, सच्चाई के मार्ग पर अगर कोई चलते चलते और थोड़ा सा कोई दोष इत्यादि लगा देता है तो वो उन दोषों को अगर दिख जाते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। और अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए गिर ही जाए, नहीं संभल पाए, तो उसे उठा करके पुनः मार्ग पर स्थित कर देता है। स्वयं भी कभी अगर अपने भीतर कषाय के और मिथ्यात के उदय में लिए गए व्रत नियम आचरण या श्रद्धान और ज्ञान में कोई विचलन होता है तो उसे भी सावधान होकर के संभाल लेता है, पुनः मोक्ष मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में स्थित कर लेता है, अपने आप को भी, दूसरे को भी। अपने साधर्मी जनों के प्रति बहुत निस्वार्थ प्रेम उसके भीतर अपने आप उमड़ता है। अपन पढ़ते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ऐसा नहीं कि गुणी जन हो तो मुझे प्रेम उनको करना पड़े, सोच सोच करके करना पड़े, नहीं, उमड़ आवे। नेचुरली सहज रूप से ऐसा हो जाए कि थोड़े से किसी को गुणवान देख करके अरे वाह। छोटे से बच्चे के भीतर जैसे अपन कोई बात उपलब्धि इत्यादि पाने पर उसकी पीठ थपथपाते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, वाह वाह करते हैं, ठीक ऐसे ही अपने साधर्मी जनों के प्रति भी अपने मन में उसके थोड़े से गुणों को देख करके भी बहुत उत्साह और बहुत प्रेम, उसकी प्रशंसा करने का भाव अपने भीतर आए, जबकि अपनी दृष्टि निर्मल हो। हम प्रयास करें कि हमारे भीतर भी ऐसी भावना दृष्टि की निर्मलता के साथ आवे। और आखिरी चीज है प्रभावना, हमारे अपने आचरण से, हमारे अपने ज्ञान से, हमारी अपनी श्रद्धा से औरों को भी श्रद्धा उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो, आचरण में उनके भी समीचीनता आए, इस तरह का प्रयत्न करना। वैसे तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठेंगे तो वो तो समय सारजी में उसे ही सम्यक दृष्टि जो कि प्रभावना अंग से युक्त है मानते हैं। विचारह मारूढ़ो मनोरह पहे सुहन बिजो चेदा सो जिन नान पहावी सम्मा दिठी मुनि दो। जो आत्मविद्या के रथ पर आरूढ़ होकर समस्त पांचेंद्रिय और मन की वलगाओं को अपने हाथ में लेकर के और धर्म की प्रभावना करता है, वास्तव में ऐसा सम्यक दृष्टि ही प्रभावना अंग से युक्त है। लेकिन पांच इंद्रिय और मन को जीत करके विद्या के रथ में आरूढ़ होकर के अपन धर्म की प्रभावना कर सकें, ये बहुत आसान नहीं है। तब फिर आसान सा तरीका जानने के लिए अपन समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठें कि कुछ थोड़ा सा आसान तरीका भी पता लग जाए। तो वो कहते हैं कि अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा से आत्म भावना। ज्यादा कठिन नहीं है। जो संसार में अज्ञान फैला हुआ है उस अज्ञान के अंधकार को दूर करके अपाकृत यथा यथम जितनी अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार अज्ञान के अंधकार को दूर करके जिनेंद्र भगवान के शासन की महिमा या प्रकाश को प्रकट करना, ये प्रभावना है। ये भी थोड़ा कठिन काम है। ऐसा कोई कह सकता है कि अब दूसरे का अज्ञान दूर करने के लिए पहले अपनों ही तो दूर हो जाए, जब तो दूसरे को करें तो जो तो बड़ा कठिन काम है, ऐसा लगता है। अज्ञान तीव्र व्याप्ति, पहले अपने भीतर अज्ञान का अंधकार हो, अपने भीतर रोशनी ना हो तो दूसरे के लिए रोशनी कैसे दे पाएंगे। अपने भीतर अंधेरा छाया हुआ हो तो आचार्य महाराज बहुत प्रेम से समझा रहे हैं कि पहले अपने अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को दूर करो, बस इतना ही पर्याप्त है। हमें ज्योति लेकर के दूसरे को प्रकाशित करने नहीं जाना है, अपने आप को ज्योतित कर लेना है जिससे आपो आप सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा। सन 1976 में जब पहली बार आचार्य महाराज के दर्शन करने कुंडलपुर पहुंचा, धीरे धीरे आचार्य श्री के समीप पहुंचने की, सब लोगों के कहने से उनके पास बैठने की और भावना बनने लगी। छोटा होने की वजह से कि इनको कुछ नहीं कहेंगे आचार्य महाराज, लोग हर काम में मुझे आगे कर देते। अब हुआ क्या कि शाम को सब लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, सामायिक का समय हो गया, तो आचार्य श्री बाहर से उठ करके और मंदिर के भीतर जाने लगे कमंडल उठा करके। तो जल्दी से वो भीतर प्रवेश करने वाले थे, उतने में ही किसी ने मुझे धक्का दे करके कहा कि थोड़ी लाइट तो जला दो मंदिर के भीतर की, उजियार हो जाए, प्रकाश हो जाएगा। अच्छी बात। तो मैं भी डरते डरते आचार्य श्री पहुंचे और मैंने ढूंढना शुरू किया कि लाइट के लिए कहां से स्विच ऑन किया जाए। इसके पहले कि मेरा हाथ स्विच तक पहुंचे, आचार्य श्री के मुंह से शब्द निकले कि हां ठीक तो है, अपने भीतर प्रकाश कर लो। ठीक कह रहे हैं लोग कि भीतर महाराज जी प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए उजाला कर दो, पहले अपने भीतर तो प्रकाश कर दो। इतना वाक आज भी याद रहता है कि मुझे बाहर प्रकाश फैलाने से पहले अपने भीतर के अंधेरे को दूर करना है, तभी मेरे द्वारा धर्म की प्रभावना हो पाएगी। मैं स्वयं अपने आप को अंधकार में रखूं और सबके लिए ज्योति दिखाता रहूं, लालटेन लेकर के सारे संसार को प्रकाश दूं, ये प्रभावना आज वर्तमान में बहुत हो रही है। जगर मगर लाइट लगा करके, बढ़िया भव्य पंडाल लगा करके, दूर दूर तक स्पीकर लगा करके, धन पैसा अनाप शनाप खर्च करके, दिखता ये है कि पंचकरण हुआ था जिसमें 10 लाख बचे थे, विद्युन 30 खत्म हो गए, मिट गए, बेनी दिखाने। वो 10 लाख बचे हैं, 30 लाख रुपए खर्च हो गए, ये नहीं, वो भी किसके यहां गए? बाजी वाले के यहां, टेंट हाउस वाले के यहां, आपके ज्यादा से ज्यादा ईंट चूने गारे में लग गए होंगे। 30 लाख रुपए, जिस 30 लाख रुपए में और 30 बेटियां जिनका की विवाह दहेज की वजह से रुका हुआ था उनका हो सकता था, या कि 30 बच्चे स्कॉलरशिप लेकर के और अपना कल्याण कर सकते थे, पढ़ सकते थे, या कि 30 लोगों को आप 1-1 लाख रुपए कैपिटल देकर के उनको रोजगार दे सकते थे। उस 30 लाख रुपए का 5 दिन के अंदर और जगर मगर प्रभावना के लिए, हाँ का बहुत प्रभावना होगी। अपने मन में इस तरह की बाह्य प्रभावना का एक पैटर्न बन गया है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, बाह्य और अंतरंग दोनों तरह की प्रभावना होनी चाहिए। जितना अपन बाहर में प्रकाश फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, उतना ही मेरे भीतर भी अज्ञान का अंधकार हटे और भीतर में प्रकाश आवे, भैया तभी वो प्रभावना कहलाएगी। अमृतचंद स्वामी स्पष्ट रूप से दोनों प्रकार की प्रभावना के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं, आत्मा प्रभावनीया रत्नत्रय तेजसा सततम एव। ये अंतरंग प्रभावना है, आत्मा की प्रभावना रत्नत्रय के तेज के द्वारा निरंतर कहते रहने, सततम एव निरंतर करना चाहिए। और बाह्य में दान तपो जिन पूजा विद्यातिथयैश्च जिन धर्मा, जिनेन्द्र भगवान के धर्म की प्रभावना बाह्य में दान के द्वारा, तप के द्वारा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा के द्वारा, या कि ज्ञान के द्वारा निरंतर, उसके अतिशय के द्वारा निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसी अंतरंग और बाह्य प्रभावना के बारे में बहुत स्पष्ट उन्होंने भी, अमृतचंद स्वामी ने भी लिखा। अपन अपने तरह से प्रभावना का अर्थ लगा करके, जो कि न बाह्य में आएगी न अंतरंग में आएगी, ऐसी प्रभावना आज अपन कर रहे हैं। अपन थोड़ा सा विचार करें कि अगर दृष्टि की निर्मलता के साथ जो प्रभावना है, वास्तव में जैसी आचार्यों ने, पूर्व आचार्यों ने कही है, उसमें से यदि 1% भी अपन करें तो वास्तव में अपना भी कल्याण हो और प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त बने। भैया भीतर अंधेरा हो, बुरा नहीं मानना, अपन लोग बड़े बड़े पदों पर स्थित हैं समाज के, और कब हो सकता है कि जीव अजीब की परिभाषा ने मालूम हो, 6 द्रव्य और 7 तत्व ने मालूम हो, अध्यक्ष बने हैं समाज के, बुरा तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अपना अज्ञान पहले दूर करने का भाव ही नहीं। मैं उलाहना नहीं दे रहा हूं, अपन अगर उस पद पर हैं तो अपनी कितने बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं, पूरे समाज ने मुझे इस पद पर बिठाला है, अब मेरा भी कुछ फर्ज है, मैं पहले अपने अज्ञान को दूर करूं। कुछ फंडामेंटल सब जैनिज्म मेरे अंदर भी होना चाहिए, मुझे भी मालूम होना चाहिए। कम से कम ऐसा तो ना हो कि मैं ऐसी क्रियाएं करूं जिसे देख करके और लोग हंसे या उसको फॉलो करके स्वयं पतित हो जाए। अगर मैं बड़े पद पर बैठा हूं तो मुझे रात्रि में खाते देख करके बाकी लोगों को क्या मैसेज मिलेगा, क्या धर्म की प्रभावना होगी? मैं अगर बड़े पद पर हूं और होटल में बैठा दिखूंगा तो लोग कहेंगे देखो फलाने समाज के मुख्य व्यक्ति हैं, भी होटल में बैठे, पाउच खा रहे। अब बताओ ऐसी स्थितियों से प्रभावना होगी क्या? अकेले बहुत बढ़िया पैंडाल लगा के प्रवचन करवा लेने अकेले से नहीं होगी भैया, ये भी करना पड़ेगा अपने अंतरंग में। देखो युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण अपन सब पढ़ते हैं, उनके गुरुजी ने उनको थोड़ा सा सबक याद करने दिया था कक्षा में कि एक लाइन याद करने को कि क्रोध नहीं करना, क्रोध करना बुरी चीज है, ऐसा याद करके आना सब बच्चे। दूसरे दिन सबने बता दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि याद हो गया? कहने अभी नहीं हुआ। एक दिन, दो दिन, चार दिन, गुरुजी भी कब तक गुंजा, कब तक धैर्य रखते? छह महीने तक पाठ याद नहीं हुआ ऐसा युधिष्ठिर कहते रहे। छह महीने तक नहीं हुआ तो गुरुजी को लगा कि इतना होशियार बच्चा है और इतना डल निकल गया, पढ़ने लिखने में इतना कमजोर, और गुस्सा आ गई और गुरुजी ने उठाया बैंत और अच्छी पिटाई करी युधिष्ठिर महाराज की बचपन में। इसके बाद भी वो शांत भाव से समता परिणाम पूर्वक उस पिटाई को सहन करते रहे, और जब गुरुजी पिटाई कर चुके और फिर कहा कि याद करके आना, तो युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत शांत भाव से कहा कि गुरुजी मुझे याद हो गया। अब आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी पिटाई के बाद याद हो पाया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पाठ तो याद उसी क्षण हो गया था, लेकिन मेरे जीवन में कहां आया था? क्रोध अगर बुरा है और मुझे आता है तो काय का पाठ याद हुआ मुझे? अभी मुझे पाठ याद ही नहीं हुआ। आज जब आपने मुझे इतनी पिटाई करी और मेरे भीतर आपके प्रति जरा भी कलुषता नहीं आई, जरा भी क्रोध का भाव नहीं आया, तो मैंने कह दिया कि मुझे पाठ अब याद हो गया है। वास्तव में इससे धर्म की प्रभावना होती है, धर्म को धारण करने वाले लोगों के द्वारा धर्म की प्रभावना होती है। अपन धर्म को बिना धारण किए हुए अकेले वचन से और शरीरों से, शरीर से अगर धर्म की प्रभावना करना चाहें तो वो किस तरह की प्रभावना होगी? जिसको जनरंजन बोलते हैं, थोड़े से समय के लिए लोग प्रसन्न होकर के वाह वाह क्या बात है साहब, क्या लाइट थी साहब और क्या व्यवस्था थी साहब, ऐसा कह करके चले जाएंगे, लेकिन उनके जीवन का कल्याण क्या हुआ? पूछा नहीं। 2001 में आचार्य महाराज के सानिध्य में इतना बड़ा कुंडलपुर में प्रोग्राम हुआ, पंचकर्णक हुआ, महामस्तकाभिषेक हुआ, कम से कम 5,00,000 लोग वहां पर उपस्थित थे। ऐसे ही मेरे मन में आया कि पूछे तो दो चार लोगों से, अच्छे अच्छे समझदार समझदार पढ़े लिखे होशियार बैठे, चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा कि कैसा लगा आपको प्रोग्राम वगैरह? अरे कहले महाराज ने पूछो प्रोग्राम, क्या व्यवस्थाएं हैं साहब, क्या ठहरने की व्यवस्था है, क्या खाने की व्यवस्था है? एक जन तो कहले इतना बढ़िया खाना है कि नाक फटी जा रही, एक तो सिद्ध भी है। अब बताओ किसी ने उनमें से ये नहीं कहा कि आनंद आ गया, क्या मस्तकाभिषेक में भगवान की वीतराग छवि देख करके जीवन भर के लिए धन हो गया, क्या पंडाल में से आचार्य महाराज के प्रवचन सुनकर के मेरे जीवन में अब कषायों में मंदता आ गई, ऐसा तो किसी ने लौटते हुए नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि क्या व्यवस्थाएं थी, इससे प्रभावना हुई क्या? ये प्रभावना का क्राइटेरिया है अपना, थोड़ा विचार करने की चीज है। अपने को ही तो बदलना पड़ेगा अपना मन कि हमने जिस चीज में प्रभावना मानी थी वास्तव में वो प्रभावना नहीं है। मुझे अपने जीवन में धर्म धारण करने के लिए ही ये सारे आयोजन थे, अगर मैंने आयोजन तो कर लिया लेकिन धर्म धारण नहीं किया तो फिर मुझे उस आयोजन से क्या लाभ मिला, औरों को क्या मिला होगा? आप आश्चर्य करेंगे, पंच कल्याणक का लाभ जितना अपन नहीं ले पाते, एक श्रद्धा से संपन्न जैन कुल में नहीं उत्पन्न हुआ है वो भी ले सकता है। जबकि जैन कुल में उत्पन्न होकर के अपन पंचकरण में सम्मिलित होकर के उतना लाभ नहीं ले पाते। सागर में ही 1992 की बात है, गजरत में आचार्य महाराज के सानिध्य में पूरा संघ था। गजरत की 7 फेरियां हो गई और रथ में से श्री जी उतर गए और पेंडाल में प्रवचन होकर के आचार्य श्री अपने स्थान पर पहुंच गए, हम सब लोग पहुंच गए। आखिरी में धीरे धीरे पूरा संघ पहुंच रहा था तो सबसे अंत में हम लोग बात करते जा रहे थे। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे स्वयं ही आश्चर्य हुआ कि श्री जी नहीं है रथ में, लेकिन रथ खड़ा हुआ है। श्री जी के रथ के ऊपर वो झिलमिल झिलमिल सितारे होते ना, वो लुटाए गए थे, फेंके गए थे, वो जमीन में गिर गए थे। और इतना ही नहीं, जहां जहां से वो रथ निकला था उसकी मिट्टी और उसमें सितारे लग गए थे। तो कुछ लोग एक ही काम कर रहे थे, कैसे कर रहे थे ये आप जानो, अज्ञानता पूर्वक कर रहे थे या ज्ञान पूर्वक कर रहे थे ये महत्वपूर्ण नहीं है उस क्षणों में। वैसे है महत्वपूर्ण कि ज्ञान पूर्वक क्रिया करनी चाहिए, नहीं तो अब भाई तो फिर में प्रश्न आ जाए कि आप कह रहे थे प्रवचन में ऐसी, बहुत झगड़ा है, थोड़े शब्द हैं और उनको ये ऐसा आशय न समझने की वजह से होता। वहां महत्वपूर्ण क्या चीज है, वहां महत्वपूर्ण ये है कि देखो अपन तो श्री जी के बैठे हुए समय में रथ को प्रणाम कर रहे हैं, बाकी जो जैन कुल में उत्पन्न नहीं हुए वे ये सोच करके कि यही रथ है जिसमें श्री जी विराजमान हुए थे, जहां जहां से रथ गुजरा है वहां की मिट्टी पवित्र हो गई, मैं थोड़ी सी उसके चक्के में से मिट्टी निकाल लूं, जो सितारे बरसाए हैं वो अपने पॉकेट में रख लूं, मेरा जीवन धन हो गया। बताइए, एक श्रद्धा वो है। और अपन लोग कैसा कर पाते हैं, अपन तो इसको अज्ञानता कहेंगे, क्या अज्ञानता है, मिट्टी उठा रहे बताओ तो, ऐसा कहेंगे अपन। लेकिन उसके पीछे छिपी हुई श्रद्धा कितनी है कि सितारे और मिट्टी ये सब पवित्र हो गई भगवान के रथ के निकलने की वजह से, उस पर फेंके गए सितारे भी पवित्र हैं और वो जहां जहां से गुजरा है रथ वहां की मिट्टी भी पवित्र हो गई, उसे सिर माथे लगा रहे हैं लोग। वास्तव में तो प्रभावना उनके जिम्मे गई, उनके भीतर श्रद्धा उत्पन्न हुई जिनेंद्र भगवान के प्रति। अपन तो परंपरा से रथ के ऊपर बैठने, पीछे पीछे नहीं, रथ के ऊपर बैठने की जिद करेंगे कि हमें बिठाओ रथ में, और नल्लड़ पड़ है कि हमें नहीं बिठाओ, हमने सोई रही थी बोली हो गए ज्यादा, सो हो जान दो, हम तो बैठे ही, और लटक जे हो में ज्यादा हुई है तो। भले ही जो पशु उसे खींच रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा भार वहन हो जाए, अति भारारोपणम नाम का अतिचार आ जाए, लेकिन मैं तो उस पर बैठूंगा ही। इस तरह की जिद अपने भीतर रहती कि अपन प्रभावना कर सकते हैं, जरा सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह से अपन अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं और लोग भी अपने से कोई अपने जीवन को ऊंचा उठाने की प्रेरणा ले सकते हैं अपने को देख करके। हमेशा अगर बाह्य प्रभावना करनी है तो विचार करें, जैसे लिखा कि दान, दान आज अपन देते भी हैं तो कौन सा दान, राजसिक या तामसिक। राजसिक दान दिया जाता है अहंकार पूर्वक, और तामसिक दान कहलाता है जो उसके देने पर संक्लेश हो। देते समय तो अहंकार रहता, वो तो जब पटिया नहीं लगो बहुत दिना तक तब असंक्लेश भाव, ऐसा कह देते अपन, हमारा नाम नहीं बोलो बहुत देर तक, हम चिट्ठी भेजत रहे कि माइक पे भूत दो पे महाराज बैठे उनके सामने और उतनी जनता बैठी, हमारा नाम ही नहीं बोलो, हमने तो 10,000 रुपया दान में दे। अब इतना संक्लेश हो रहा है, दे तो दिया लेकिन नाम नहीं बोला है इस बात का संक्लेश। वो 10,000 रुपये आपके दिए ना दिए जैसे हो गए, क्योंकि आपने संक्लेश पूर्वक दिए हैं, या कि चार लोगों के बीच में मैं बहुत श्रेष्ठ दानी हूं, मैंने इतना दान दिया है, ऐसे अहंकार से भर करके अपन ने कई कई बार दान दिया है, लेकिन वास्तविक दान से प्रभावना होती है जो सात्विक होता, जिसमें लिखा है कि दाएं हाथ से दान दिया बाएं हाथ तक को नहीं मालूम पड़ा, यानी चुपचाप दे दिया। क्यों चुपचाप दे दिया, मेरा था कहां जो मैं त्याग करने का अहंकार करूं, और मेरा था नहीं इसलिए मैं त्याग करने के बाद संकलेश करूं, ये दोनों ही ठीक नहीं है। बहुत अच्छा हुआ मेरा थोड़ा सा आसक्ति या परिग्रह दान देने से कम हुआ। इस तरह अगर अपने अंदर भाव है तो ही सात्विक दान कहलाएगा। अपन सब जानते हैं कि दान में अभी तक प्रसिद्ध हैं भामा शाह, क्यों नहीं और लोगों को दान का नाम अकेले पटिया पर लिखो रहेगा, और को कछु नहीं ले बारो नाम नहीं है कौन, अकेले पटिया पे लिखो फोटो लगी है अपने ऑफिस में कि जे दानवीर हते, जे फलाने सेठ जी हते, लेकिन छोटे से बच्चे के जवान पर नाम है दान देने में, भामा शाह का नाम आज भी है। क्यों है, क्योंकि उनने अपने ऐसे समय और सहज भाव से पूरा पूरा शिवाजी को दान दे दिया। जैन थे भामा शाह, और उन्होंने अपना पूरा कोष शिवाजी को समर्पित कर दिया, किसी से कहा तक नहीं कि मैं ये दे रहा हूं, मेरी फोटो छापो वीडियो बनाओ, नहीं कुछ नहीं कहा, दे दिया बस। वास्तव में ऐसे दान के द्वारा धर्म की प्रभावना हो सकती, तप के द्वारा धर्म की प्रभावना होती, तपस्या किसने करी? आप सोच सकते हैं आज वर्तमान में तपस्या में अगर नाम आता है तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम नहीं, अपनी इच्छाओं का निरोध कर लेने का नाम तप है। ठीक समय पर अपने इच्छाओं आवश्यक जो एक साधु के लिए चर्या होनी चाहिए वैसी की वैसी चर्या करना, यह भी क्या कम तपस्या है? मुक्तागिरी के अंदर निर्जल 9 दिन तक लगातार उपवास किए, आज इस सड़े शरीर से अपन इतनी तपस्या कर सकते? तपस्या अंतरंग में भी और बाहर में भी दोनों में निष्णात आचार्य श्री है, उनके द्वारा धर्म की प्रभावना होती, अकेले ऐसे नहीं कुछ किया भी नहीं और अकेले पैसे से ही धर्म की प्रभावना कर दी। पैसा तब सार्थक होता है प्रभावना में, तब काम आता है जब उसके पीछे व्यक्ति के आत्म कल्याण की संस्कारों की भी बात जुड़ी हुई। लेकिन आज इतना सारा पैसे का दान होता, लेकिन जिस व्यक्ति ने दान दिया है उसके कल्याण में वो कारण नहीं बनता, उसके संस्कार भी कोई ज्यादा परिवर्तित नहीं होते, तब फिर उसकी सार्थकता नहीं हो पाती। ऐसी तपस्या, ऐसा दान जिससे कि मेरी आकांक्षाएं कम हो तो तपस्या होगी, दान से दूसरे का उपकार भी होगा और तपस्या से मेरा अपना स्वयं का उपकार होगा। इस तरह की भावना जिसके भीतर है वही दान और तप के द्वारा धर्म की प्रभावना कर सकता, पूजा और विद्या के द्वारा। पूजा में किसका नाम आता? अपन तपन का नाम आता, चाहे कितना सिद्ध चक्र विधान कर लो, कितना पैसा खर्च कर लो, कोई को नाम नहीं आऊ। नाम आएगा तब बच्चे बच्चे के जबान पर आएगा, फल पायो मै नारानी है, सिद्ध चक्र का पाठ करो। ऐसा नाम कब से आ रहा है, कितने वर्षों से, उनकी पूजा की लोग आज भी प्रशंसा करते हैं, और अपन इतने पैसा खर्च कर करके इतनी बड़ी बड़ी पूजा कर रहे हैं और कोई अपना नाम नहीं ले रहा, बताओ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं धर्म की प्रभावना अपन के द्वारा इस तरह से हो पा रही, और पूर्व में जो किया गया है उसके द्वारा क्यों आज हम उनका नाम ले रहे हैं और प्रभावना कर रहे हैं? मैना सुंदरी ने क्या किया था जिसके कारण उनका सिद्ध चक्र विधान उनके लिए फलदायी हो गया उनकी श्रद्धा, उनके परिणामों की निर्मलता। पैसे तो खर्च उनने किए नहीं थे सिद्ध जाति विधान में, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि उनने 2 लाख रुपया को सिद्ध जग कराओ तो अच्छी बाजी बारे घुलवाओ तो 15,000 रुपये वो कहते थे जब उन्हें फिल्मी तर्जों पे सबरे गीत गाए थे। पूरी पूजा उन्हें कर दी, अपन तो स्वाहा स्वाहा करते रहे बस, ऐसे ही होता। इससे प्रभावना होगी या कि अपने अंतरंग में विशुद्धि और श्रद्धान के साथ साथ उन्होंने वो अनुष्ठान किया और जिससे कि कुष्ठ रोग से ग्रसित श्रीपाल और उनके जो सैनिक थे उन सबको मुक्त कर दिया कुष्ठ रोग से। किसने मुक्त कर दिया? सिद्ध चक्र विधान ने नहीं, सिद्ध चक्र विधान तो निमित्त है। उन सब ने अपने असाता की निद्रा के लिए अपने भीतर कषायों को मंद किया, विशुद्धि बढ़ाई, जिससे कि ये काम आसान हो गया। अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए ही अनुष्ठान, इन अनुष्ठानों के द्वारा अपनी विशुद्धि बढ़े तो वास्तव में प्रभावना आज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो सकती प्रभावना। मैंने सुंदरी ने प्रभावना की थी सिद्ध चक्र विधान करवा के, आज भी वर्तमान में वहां पर गुना में है डॉक्टर साहब एक, वो कह रहे थे महाराज जरूरी है क्या सिद्ध चक्र विधान में और खूब तामझाम से करना? मैंने कहा किसने कहा आपसे? कह रहे जी तो हम सोच रहे थे, सब जने ऐसी कहते हैं, हम हर साल सिद्ध चक्र विधान करते हैं अष्टानिका में, कहां चले जाते? चांद खेड़ी, और वहीं पर 10 दिन शुद्ध भोजन स्वयं करते हैं। जिस दिन 8 अर्घ चढ़ना है 8 चढ़ाते दोनों पति पत्नी, और 16 चढ़ाना 16, 64 चढ़ाना 64, चुपचाप अपने सब पूजा भगवान की करके अर्घ चढ़ा के और एक आसन पूर्वक अपना धर्म ध्यान करते रहते हैं। फिर 10 दिन बाद अपने घर लौटेंगे। 10 दिन तक शुद्ध भोजन करके स्वयं अनुष्ठान कर रहे हैं, ये सिद्ध चक्र विधान है। इससे अपने जीवन का कल्याण और दूसरे को भी ठीक दिशा मिलती है, उसका भी कल्याण होता है। और विद्या का अतिशय क्या है, ज्ञान का अतिशय क्या है? देखो ज्ञान का अतिशय देखना हो अगर, किसका नाम लेते अपन? स्वामी समंत भद्राचार्य का, अकलंक स्वामी का। किस तरह का ज्ञान था? लोगों के लिए उलझाने वाला ज्ञान नहीं था, बल्कि जो उलझन है उसको सुलझाने वाला। आज अपने पास थोड़ा सा ज्ञान हो जाए अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए अपने को पंडित कहलाने का मन होने लगता, अपने आप को विद्वान मानने का मन होने लगता। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए इतना तो ठीक है, दूसरे को अज्ञानी कहने का मन होने लगता है, ये सबसे खतरनाक। हम ज्ञानवान हैं ये तो बहुत ठीक है, लेकिन तुम कछु नहीं जानत, हम जानत सब। ये जो भावना अपने भीतर आ जाती दूसरे को तुच्छ मानने की, उससे ना अपना आत्मकल्याण होता ना किसी अन्य को प्रेरणा मिलती है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे कि अपना जीवन भी आसान बनाने के लिए अपने भीतर विवेक जागृत हो और अपने जीवन को देख करके और दूसरे भी प्रेरणा ले सके। गांधी जी से पूछा जाता था कि आप क्या हमारे लिए शिक्षा देंगे, कुछ बताएं 2-4 लाइनें। बहुत लोग पूछते हैं कछु शिक्षा दो महाराज, हम आए आपके दर्शन करने के लिए। गांधी जी कहते थे हमारा जीवन ही हमारा दर्शन है, हमारा ज्ञान हमारे जीवन से आप लेना चाहो तो ले लो, हमारी बातों से तो ज्ञान ले सकते हैं लेकिन हमारे जीवन से जिस दिन भी आप ज्ञान लेने लगे उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा कि हमने ठीक ढंग से जिया। विनोबा हमेशा कहा करते थे कि ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा कि आप क्या खाते हैं और कैसे जीते हैं, जब आप मरने लगोगे तब मालूम पड़ेगा कि आपने क्या खाया होगा और कैसे जिए होंगे। मरते समय अगर आप संक्लेश पूर्वक अहंकार पूर्वक मर रहे हैं तो आपने जीवन ठीक से नहीं जिया, ये पता हो जाएगा। आपने ज्ञान पूर्वक नहीं जिया, अज्ञानता में आपका जीवन पूरा व्यतीत हो गया। आप अगर समता पूर्वक सहन करते हुए अपने देह को छोड़ रहे हैं तो माना जाएगा कि हां पढ़े लिखे हो, समता भाव से आपने अपने जीवन में ज्ञान हासिल किया है, उस ज्ञान के प्रतिफल स्वरूप ही आज आप मरण के समय अत्यंत शांत परिणाम होकर के अपनी देह को छोड़ रहे हैं। इस तरह अपने अंदर भी ज्ञान प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए। अकलंक स्वामी को तो इतना क्षयोपशम था कि एक बार कोई ने कोई चीज कह दी, उनको याद हो जाती थी, स्मरण में आ जाती थी। और उनके भाई निकलंक स्वामी थे, उनको दो बार में चीज याद हो जाती थी। बड़े से बड़े वाद विवाद इत्यादि में दोनों भाई चले जाया करते थे और वाद विवाद में जीत करके लौटते थे। कैसे? जैसे ही सामने वाला बहुत सारी चीजें बोलता, अकलंक स्वामी कहते ये तो मुझे पहले से मालूम है और सुना देते पूरा, अगर नहीं विश्वास हो तो सुन लो, क्योंकि एक बार सुन करके सब याद हो गया उनको। और जैसे ही अकलंक स्वामी ने सब सुनाया, सुन के भैया कहना मैं भैया से पूछ लो, क्योंकि दो होगा दो बार में, तो वो ही सुना देते थे, अरे भाई इनको तो ये चीज पहले से मालूम। इतना क्षयोपशम, जिसके वजह से धर्म की प्रभावना की। अकलंक स्वामी के साथ साथ समंत भद्र स्वामी जो कि दार्शनिक थे, जिनको कि भस्मक व्याधि हो गई थी, 35-40 वर्ष की उम्र में इतनी तपस्या की उन्होंने कि जो भी भोजन करते थे वो सब उनका जल करके भस्म हो जाता था। इतनी जठराग्नि प्रबल हो गई, अपने गुरु से जाकर निवेदन किया था कि मुझे समाधि दे दें, अब तो इस महाव्रत पर मुनि अवस्था में रह करके और मैं ठीक से अपने व्रतों का पालन नहीं कर पाऊंगा। गुरु जी ने जानते थे वो कि अभी तो समंत भद्र स्वामी के द्वारा बहुत धर्म की प्रभावना होगी। उन्होंने क्या कहा, आज अपन होते तो क्या कहते, सोच लेना आप ही, हमने कहेंगे कुछ। उन्होंने कहा कि अकेले वेश से कल्याण नहीं होता, वेश के बिना भी कल्याण नहीं होता, लेकिन अकेले वेश से कल्याण नहीं होता। आप वेश छोड़ करके अपनी श्रद्धा बना करके पहले और रोग को ठीक कर ले। समंत भद्र स्वामी ने वेश छोड़ करके अंतरंग में सम्यक दर्शन के साथ साथ और किसी जगह जाकर के जहां प्रसाद बनता था वहां का प्रसाद भक्षण करके और 9 दिन के अंदर, कोई कोई तो 6 महीने कहते हैं, कोई कोई वैद्य वगैरह है कि भस्मक व्याधि, इतना अधिक मात्रा में भोजन अगर और घी इत्यादि से युक्त भोजन किया जाएगा तो 9 दिन में शांत हो जाएगी व्याधि। तो 9 दिन में शांत हुआ, 10वें दिन क्या कहकर के स्वयं खाते थे कि हम तुम्हारे भगवान को खुआ रहे, वो खाते थे खुद, तो लोग भी चकित थे कि भाई ठीक है भगवान खा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी, अच्छी मिली। और इतना इतना मनो मनो भगवान ही खा सका, सामान्य आदमी तो खा नहीं सकता, लोग भी ऐसा भ्रम में थे और ये स्वयं खा लेते थे। उस व्याधि की वजह से वो सब हजम हो जाता था, भस्म हो जाता था। 9 दिन के बाद 10वें दिन जब चढ़ावा चढ़ा तब भस्मक व्याधि ठीक हो जाने की वजह से सब कुछ वहां पर प्रसाद के रूप में पड़ा रहा। तब समंत भद्र स्वामी ने कहा कि आज तो भगवान ने खाया नहीं कुछ, सब लोग उसको ले लो। वहां पर छुप करके एक व्यक्ति देख रहा था कि ये भगवान को नहीं खुआऊ, खुद ये खा ले, तो उसने जाकर के राजा से शिकायत कर ली कि जी भगवान अगवान के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है, ये नहीं मानते राजी भगवान को, ये प्रणाम तक नहीं करते, ये खुद खा लेते हैं, अपन को भूतू बनाते हैं कि हम तुम्हारे भगवान को खिला रहे हैं। बस राजा साहब को गुस्सा आ गई, राजा साहब ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा लेंगे हम, भगवान को प्रणाम करो। जिनको कि सारा संसार मानता था, जो कि राग द्वेष से जिनका चित्त मलिन है, उनको भगवान मानने वाले लोगों ने कहा कि तुम इन्हें प्रणाम करो। समंत भद्र स्वामी ने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा प्रणाम, ये राग द्वेष से युक्त तुम्हारे देवी देवता झेल नहीं पाएंगे, बताइए आप। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना श्रद्धान है वितरागता के प्रति कि नहीं झेल पाएंगे। और वास्तव में यही हुआ, जैसे ही उन्होंने कहा चंद्र प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे वंद्यम महाता मृषींद्रम जिनम जित स्वांत कसाय वंद्यम, स्वयंभू स्तोत्र की रचना में आठवें भगवान की जैसे ही स्तुति की और वहां चंद्रपू भगवान की वीतराग प्रतिमा प्रकट हो गई। क्या धर्म की भावना हुई, उनके ज्ञान की वजह से, उनके श्रद्धान की वजह से सारे लोग झुक गए कि वास्तव में तो वीतराग स्वरूप ही भगवान का है, हम इसी का अनुसरण करेंगे। आज अपन वर्तमान में ऐसा क्या अपने भीतर श्रद्धान और ज्ञान है जो कि ऐसा, अपन तो चमत्कार भर मान लेंगे कि वो तो चमत्कार भाव होते, वो में से मूर्ति में से पानी निकलन लगो, चलो सब जने भगत चलो, पहले भी अति वीतराग भगवान लेकिन अब वो में से पानी निकल रहा उससे चमत्कार हो गो। वीतरागता का चमत्कार क्या कमती चमत्कार है? अपने पांच इंद्रिय और मन को जीत लेने वाला चित चमत्कार करने वाला बड़ा है या कि हाथ पर लड्डू ला करके प्रकट कर देने वाला बड़ा है, यह अपन को स्वयं विचार करना चाहिए। ऐसे चमत्कार से अपन प्रभावित हो जाते हैं जबकि पांच इंद्रिय और मन को जीत करके अपने आत्मा के वैभव को प्राप्त करने में लगे हुए अपने आप बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन अपन इसको प्रभावना न मान करके अपने अंदर प्रभावना का क्राइटेरिया अपन ने बदल दिया, भैया अपन को बदलना पड़ेगा। अगर अपन ने ही ऐसा मान लिया है अपनी अज्ञानता पूर्वक तो अपन थोड़ा सा उसमें संशोधन करें, और जैसा आचार्य भगवंतों ने प्रभावना का वाही और अंतरंग स्वरूप कहा है उसका जितनी अपनी शक्ति होवे ठीक ठीक समझ करके अपने जीवन में उसको अंगीकार करें तो वास्तव में अपने जीवन का कल्याण होगा और अपने माध्यम से अपने उठने बैठने आने जाने बोलने चालने में सब में धर्म झलकने लगे तो देखने वाले कहेंगे भैया धर्म का सच्चा स्वरूप तो ये है, अकेले तिलक लगाने में से वो पंचा पहन लेने से धर्म नहीं होता। आपके वाणी से अपने ग्राहकों से धीरे से बात कर रहे हैं भैया बहुत धर्मात्मा है, कभी ऊंचे नहीं बोला, कभी गुस्सा होते नहीं देखा हमने, बड़ा अच्छा धर्म है इनका तो, बहुत सेवा करते हैं बहुत उपकार करते हैं, अपने व्रत नियमों का पालन करने में दूसरे को क्षति ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं। ये सब अपने जीवन में अगर प्रकट होता है तो इसके द्वारा अपना तो कल्याण होता ही है और जो जीव अपना कल्याण के मार्ग पर लगना चाहते हैं वो भी अपन से प्रेरणा लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। भैया वाही और अंतरंग प्रभावना दोनों होनी चाहिए, अकेली वाही प्रभावना से नहीं होगा, वास्तव में प्रभावना वही है जिसमें कि अपन अपने अज्ञान अंधकार को हटा करके अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं और अपने जीवन के प्रकाशित होने से दूसरे लोग भी देख करके अपने जीवन को प्रकाशित करने की प्रेरणा पा लेते हैं। वास्तव में भगवान जिनेंद्र के मार्ग की प्रभावना ऐसी ही है। बोली आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है,
जग जग विषयों में रचित चित गाफिल निद्रा में सोता
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता
हूँ, शाता सन्नाटा मन चारे चरते हैं,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तो कुशल नदी तट पर तरुता
की घड़ियों में
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जड़ती हाँ फूल झड़िया
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया
दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणिया
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
उदति चंदन कंदन पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप पनार्धक
अवन मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महम
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भूमि सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य
मिथ्या कर्म नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा पर वास देखो भानु शिव कानी है
श्याम द्रव्य जान देखो बंदे विधि भान देखो स्वपर पहचान देखो परम प्रमाणी है
अनुभव ताए देखो जीवों के जताए देखो सौना सताए देखो भव्य उड़ानी है
जहाँ तहाँ तार देखो तार के उतार देखो सुख विस्तार देखो यही जिन वाणी है
जावाणी के ज्ञान से सुझलो कालो सुवाणी मस्तक नमो सत